ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகணல்லய அபக்த அபிநாஷர் சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் கருணா வருணாலய் प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ विचार कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद का चौथा मंत्र कि आत्मस्वरूप. आत्मा कैसा है इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि वह जो निरतिशय व्यापक आत्मा है, जिसके लिए कहा अनेक देजम मनुषो जीवयो. अनेक वह अनेक होता, वह आत्मा अनेज देकम मनुषो जीवयो, अर्थात वह आत्मतत्व अपरिणामी. पहली बात कि अविचलित, वो अविचलित होने वाला एक मनुष्यो जीवयो, अनेक देजम मनुष्यो जीवयो, अनेक वह आत्मा जो अपरिणामी है माने अविचलित, जो कभी विचलित होने वाला नहीं है, और एक है नैनम देवा आपनुवन मर्षत, वह किसी देवता के द्वारा माने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है. इंद्रियां चाहें कि उसे प्राप्त कर ले माने इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय विषय तीत, इसीलिए हम उसे कहते हैं अगोचर. जो गौ गोचर लगी, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है उस इंद्रिय की पहुंच से परे, उस इंद्रिय की पहुंच से रहित, इसीलिए कहा नैनम देवा आपनुमन मर्षत, अर्थात वह किसी इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं है और किसी भी नाम रूप की वो हिंसा भी नहीं करता. आपनुमन मर्षत माने हिंसा. हिंसा अभिप्राय ये है कि किसी भी नाम रूप को आत्मा किसी भी नाम रूप की हिंसा नहीं करता है माने जो जैसा है उसको वैसा प्रकाशित करता है. सूर्य की रोशनी में हम कोई चीज लाते हैं तो सूर्य अपने आप से कुछ उसमें बनाता नहीं है, पैदा नहीं करता है, वो सबका प्रकाशक है. नाम का भी रूप का भी प्रकाश उसी आत्मा से हो रहा है. सूर्य की रोशनी में हम कोई चीज रखें तो उसमें सूर्य रंग पैदा नहीं करता है, किसी चीज को बनाता नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा प्रकाशित करता, अर्थात नाम रूप का प्रकाशक, या यूं कहिए कि नाम रूप का अधिष्ठान स्वरूप वह आत्मा ही है, आत्मा के ही प्रकाश. नैनम आत्मा अपनुन मर्षत, और कहा तद धावतो अनन्योत्येति तिष्ठति तस्मिन् रापो मातृस्रवा दधाति, अर्थात वह आत्मा जो स्वयं स्थिर रह करके भी और सबसे अधिक दौड़ने वाला है, जिसका अतिक्रमण जिसे पीछे कोई नहीं कर सकता, स्वयं स्थिर हो करके भी इंद्रियों से भी अधिक गतिशील, मनुष्यो जीवयो मन की गति से भी अधिक गतिमान, स्वयं स्थिर हो करके भी, और जो गतिशील हैं इंद्रियां, गतिशील हैं इंद्रियां, विषयों की ओर दौड़ती हैं, विषय निरंतर परिवर्तन की ओर दौड़ रहे हैं, इस अतिक्रम में वह सबसे आगे है. अर्थात जहाँ इंद्री पहुँचती है, इंद्रियों के पहुँचने से पहले वो वहाँ विद्यमान है, उपस्थित है। जिसे ये कहा जाए कि मन, जैसे कि मैंने कल कहा था, यतो यतो निश्चरति मन, जहाँ जहाँ मन जाता है, मन पहुँचे, मन को बहुत गतिवान कहा गया है। वायु से भी ज्यादा तीव्र गति किसकी है? बोले मन की है। स्वयं ये बात आप भगवत गीता विचार करते हैं तो गीता में भगवान ने, अर्जुन ने जहाँ कोई प्रश्न किए उस प्रश्न का उनको समाधान दिया, उत्तर दिया। कहीं पर अर्जुन के प्रश्न के साथ यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सहमति प्रकट की तो वो सिर्फ एक बात में है। सिर्फ एक बात ये है कि अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मन के लिए कहते हैं तो ये मन चंचला ही मन कृष्ण, कृष्ण वास्तव ये मन बड़ा चंचल है, इसकी गति इतनी तेज है, वायु रूपी दुष्कम, जैसे कोई वायु की गति को रोक पाना है ऐसे ही इस मन की गति को रोकना, ये बड़ा ही बलशाली है, प्रमाधि बल दृढ़म, ये बहुत ही बलशाली है, इस मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान ने उत्तर क्या दिया कि असंशय महाभाव, इस बात में कोई संशय नहीं है, निश्चय ही ये गतिशील है और इसको जीतना भी कठिन है। तो कहने का उपनिषद भी यही बात कहती है कि मन बहुत चंचल है, गतिशील है, दौड़ने वाला है, वेगवान है, परंतु मन की गति से भी अधिक गति किसकी है? बोले आत्मा की है। पर आश्चर्य ये है कि वो अपनी जगह से कहीं जाता नहीं, पहले ही कह दिया अपरिणामी, वो गति विचलित नहीं होता। आत्मा कभी विचलित होने वाली वस्तु नहीं है। तो जो गतिशील मन की गति से भी तीव्र गति के साथ दौड़ने वाला मन भी जिसके पहुंचने से पहले वो वहां पहुंच जाता है, बोले ऐसा कौन है? वो आत्मा है। और अपने स्थान से, अपने आप से विचलित हुए बिना, इससे अर्थ क्या हुआ कि जहां मन जाए वहां आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। जहां मन पहुंचे, जिसमें मन जाए, जिस नाम, जिस रूप, जिस वस्तु में मन जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आत्मा न हो, अर्थात आत्मा की व्याप्तता, परिपूर्णता, सर्वत्र वो आत्मा जो व्यापक है, ऐसे ऐसा वह आत्मा का स्वरूप है। गतिशील होने पर भी जो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती, माने अर्थात समस्त सत्ता उसकी है, और समस्त प्राणियों में, प्रकृति के कर्मों में जो विभाग करके सृष्टि के कार्यों में कारण और कार्य रूप जो ये प्रवृत्ति है, इन सब कार्य कारण के रूप में भी वह किसी में व्यवधान नहीं है, अभिषेक नहीं है, अर्थात वो सब जो कार्य कारण स्वरूप जो प्रवृत्ति चल रही है इन कर्मों का विभाग करता है, ये कार्य है, ये कारण है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार जो सृष्टि के कार्य कारण का चल रहा, इन सब का संबंध भी आत्मा से ही है, आत्म सत्ता से रहित ये भी नहीं हो सकता, अर्थात इन सब का अधिष्ठान स्वरूप, कार्य कारण का जो अधिष्ठान है वह भी आत्मा है। इस मंत्र से आत्मा की सार्वभौम व्याप्तता, कहीं कोई स्थान ऐसा नहीं है, कहीं कोई देश ऐसा नहीं है, कहीं कोई ऐसा काल नहीं है कि जिसे किसी काल में आत्मा की अनुपलब्धि हो, आत्मा उपलब्ध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया कि कर्म करने के लिए धर्म का विचार करो, तो प्रश्न हुआ कि धर्म का विचार कैसे करें? कैसे धर्म को समझें? कहा उसके लिए कहा कि धर्म का विचार करना चाहिए श्रुति प्रमाण से, श्रुतियों का विचार करो। श्रुति माने सुना हुआ, जो हमारी परंपरा है श्रुतिगत है, हम लोग श्रुति के अनुयायी हैं, श्रुति को मानते हैं, वेदों को, श्रुति से निर्णय करो। बोले किसी काल में किसी समय में कहीं किसी विषय में श्रुति उपलब्ध न हो तो श्रुति की अनुपलब्धि हो सकती है, तब कैसे करोगे? बोले उसके लिए फिर स्मृतियों से विचार करो, स्मृतियां क्या कहती हैं उस विषय, स्मृति से निर्णय करो धर्म का। कहा कि किसी काल में किसी समय स्मृतियां भी हमेशा बराबर चली आई हों, ऐसा नहीं, वो सभी स्मृतियां भी अनुपलब्ध हो सकती हैं, और वहां श्रुति भी न हो स्मृति भी नहीं हो, तो कहा कि उसका निर्णय भी तुम कैसे करोगे? तब कहा कि आचार धर्म है, और उस आचार धर्म से, आचार उस संबंध में महापुरुषों का, सत्पुरुषों का, महानुभावों का आचरण क्या रहा है, उसके आधार पर निर्णय करो, उसके आधार पर धर्म क्या है उस बात का निर्णय करो। कहा गया कि भाई ऐसा करने पर भी कभी कहीं पर किसी महापुरुष का उस विषय में आचार न मिले, आचरण न मिले, ये संभव हो सकता है, ये तीनों बातें संभव हो सकती हैं। तब धर्म का निर्णय कैसे हो? तो कहा गया कि श्रुतियों का अभाव हो सकता है, स्मृतियों का अभाव हो सकता है, आचार धर्म का अभाव हो सकता है, स्वात्मनम अपनी आत्मा का अभाव तो कभी किसी को नहीं हो सकता, आत्मा कभी अनुपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं की किसी को अनुपलब्धि हो, हर बात में हम मैं सबको उपलब्ध है, किसी का ऐसा अनुभव नहीं है कि मैं उपलब्ध नहीं हूं। कोई ऐसा बोलता है कि मैं हर अवस्था में जागृत स्वप्न सुसुप्त तुझे हर अवस्था में तीनों कालों में हमेशा और हर अवस्था में हर काल में हर व्यक्ति को जो उपलब्ध है, तो वो किसकी उपलब्धि गिनाता है? वो उसकी स्वात्मान अपनी आत्मा की उपलब्धि ही, उपस्थिति भी अनुभव होती है। इसलिए कहा कि श्रुतियों का अभाव हो जाए, स्मृतियों का अभाव हो जाए, और आचार धर्म का अभाव हो जाए, परंतु आत्मा का अभाव नहीं होता, आत्मा से निर्णय करना चाहिए। तो आत्मा वो है जो सर्वकाल में सब समय हमको उपलब्ध होती है, अर्थात मैं की सबको सब समय अनुभूति रहती है। मैं सुख से सोया था, रात बहुत अच्छी नींद आई थी, स्वप्न में भी मैं सोया था, उसका भी अनुभव रहता था। मैं जाग रहा था, उसकी जागृत अवस्था की भी अनुभूति है। और जब वो कहता है मैंने रात सपने में देखा था, वहाँ भी देखने वाला था, जब वो सुसुप्ति में कोई कार्य नहीं कर रहा था, सोया हुआ था, तब भी वो था, तो उसकी जो अनुभूति है वो तीनों कालों में तीनों अवस्थाओं में बराबर बनी रहती है। तो ऐसा ऐसा जो सत्य है, जो जागने पर भी रहता है, सपने में भी रहता है, सुसुप्ति में भी रहता है, अर्थात तीनों काल तीनों अवस्थाओं में जो समान रूप से उपस्थित है, वो आत्मा है। इसलिए कहा समस्त वायु समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति के कार्यों का विवाह करता है, अर्थात कार्य कारण के साथ सकल सृष्टि आवर्त संस्कार जो सृष्टि का कार्य है, इस कार्य में आत्मा कभी किसी के लिए कोई व्यवधान रूप नहीं करती, वो सर्वव्यापक है सबका, इसीलिए कहा वो साक्षी है। जैसे सूर्य का काम तो है प्रकाश करना, और उसके आगे सूर्य अपने आप से कुछ पैदा नहीं करता है, कुछ बनाता नहीं है, वो जो जैसा है उसको वैसा दिखाता है। और ये जो देखने वाला है, एक हमारे बहुत अच्छे महात्मा थे, चित्रकूट में रहते, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, और बड़े 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 विरक्त महात्मा थे, बड़ी काफी लंबी उम्र में गए, और उनकी अभी भी शिष्य परंपरा बहुत है, श्री गोहम महाराज। वो हमेशा कहा करते थे, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। उनका यही एक वो था कि बोले देखो, किसको देखो, ब्रह्म को देखो। वो संकेत करते थे अपने अंगूठे के लिए, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, और देखो देखो देखने वाले को देखो। वो जो देखने वाला है सबको देख रहा है। परंतु मैंने कल कहा था, हम भूल जाते हैं कि हमें देखने वाला, जो देखने वाला कौन है। बोले देखने वाला वो अपना आपा है, अपना मैं है, वही आत्मा है। जो अपना आपा है, अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है, उसको हमें देखना है। देखना कहने पर देखो, विचार करो, विचार पूर्वक। यदि विचार की दृष्टि से आप अपने आप को, अपने मैं को देखेंगे, और सच बात तो ये है कि हम बहुतों के लिए विचार करते हैं, कभी बेटे के लिए विचार करते हैं, कभी बेटी के लिए विचार करते हैं, कभी कारोबार के लिए विचार करते हैं, कभी व्यापार के लिए विचार करते हैं, कभी मित्रों के लिए विचार करते हैं, इतना सारा विचार करके हम रख देते हैं, इतना सब विचार करते हैं, इस भीड़ भाड़ में सिर्फ विचार करना भूल जाते हैं, तो अपने आप के लिए विचार करना भूल जाते हैं, अपने को नहीं देखते। अर्थात मैं कौन हूँ, इस बात को विचार करें। और इस बात का विचार करने के लिए हम बैठे हैं, तो मैं वो अपरिणामी है, वो विचलित नहीं होता। आत्मा कभी किसी अवस्था में वो विचलित नहीं, वो तटस्थ है, कुठस्थ है, जिसके लिए कहा गया है कि वो चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है, परिणामी नहीं है, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, अपरिवर्तनीय, अविचलित, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसमें कोई कंपन नहीं है। अनेज देकम माने कंपन, जिसके अंदर कोई कंपन नहीं है, वो चेतन है, और चेतन होते हुए भी अपरिणय, कंपन रहित है, एक हो। मनुष्यो जीवयो, मन की गति से भी ज्यादा गतिमान, मन जहां पहुंचे, मन विषय के साथ जहां उपस्थित होता है, पहुंचता है, वो वहां पूर्व उपस्थित मिलता है। जहां जहां वो जाए, वहां वहां वो उपलब्ध हो, उपलब्ध हो। माने इसीलिए संत कहते हैं, देखो मन को एकाग्र करने के लिए तुम सर्वत्र ईश्वर भाव कर लोगे, तो मन जहां जाएगा वहां तुम्हें ईश्वर ही नजर आएगा। जब सब जगह मन को एक ही वस्तु नजर आएगी, तो मन लौट करके अपने पास आ जाएगा। जब विविधता दिखाई पड़ती है, संत कहते हैं जब भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, तो मन का स्वभाव है कि भिन्नता में, विविधता में उसको रस खोजने लग जाता है, और रस ढूंढने के लिए मन हमेशा रस की ओर आकर्षित होता है, और जहां उसे भिन्नताएं नजर आती हैं, उनकी ओर वो दौड़ता है कि इसमें नवीनता है, और उसमें वो मन चंचल हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग युक्ति बताते हैं कि देखो, जहां भी तुम्हारा मन जाए, तो वहां के लिए विचार कर लो, ये भाव कर लो मन में, जिसमें मन गया है क्या उसमें वो नहीं है। यदि सब में एक वही है, तो मन को कोई दूसरा कोई नजर आएगी, मिले आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तब मन कहां जाएगा, लौट करके वो अपने निज स्वरूप में, अपने आप में आ जाएगा। इस प्रकार अपने मन को तुम एकाग्र कर सकते हो, संत कहते हैं। और उपनिषद भी यही कहती है, उपनिषद ये कहती है कि मनुष्यो जीवयो, जो मन की गति से भी, मन गति करके, दौड़ करके जहां पहुंचा, वहां वो पूर्व पहले से उपस्थित है, वहां भी वही है। अकंपन अविचलित होने पर भी जो चलाई देता हुआ गतिशील नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी वो आत्मा वहाँ उपलब्ध है, परमात्मा सत्ता वहाँ उपलब्ध है। आत्मा और परमात्मा कोई भेद नहीं है। ये दो शब्द तो मुझे ऐसे लगते हैं ना, मैं कई बार कहती हूँ, जैसे पहले हमारे देश में ये डालडा घी का उत्पादन नहीं होता था, वनस्पति घी, तो घी शब्द खाली था, घी का मतलब लोग घी ही समझते थे, उसका कोई अन्य अर्थ अन्य मतलब नहीं था। धीरे धीरे वनस्पति डालडा घी का उत्पादन बढ़ा तो उस डालडा को लोग घी समझने लगे, डालडा को लोग घी समझने लगे, तब जरूरत महसूस हुई कि घी के डब्बों में लिखा जाए शुद्ध देसी घी, उसमें देसी घी प्योर घी जो शब्द डिब्बों में लिखने की जरूरत पड़ी वो कब पड़ी, बल जब डालडा को लोग घी समझने लगे। जब तक डालडा नहीं था तो तब तक ये लिखने की आवश्यकता पड़ी, परमात्मा को परमात्मा कहने की आवश्यकता कब महसूस हुई, बोले तब महसूस हुई क्योंकि जब जीव को लोग आत्मा समझने, जब जीव को लोग आत्मा समझने लगे तो तब परमात्मा को परमात्मा लिखने की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा परमात्मा मतलब आत्मा मतलब परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही होगा। इसलिए उपनिषदों में परमात्मा शब्द नहीं आत्मा शब्द का ही प्रयोग मिलता है, केवल आत्मा शब्द। तो ये आत्मा का अर्थ जिसे हम परमात्मा कहते हैं वही समझना चाहिए और उस परमात्मा को ही आत्मा में समझना चाहिए। जहाँ परमात्मा शब्द आता है उसे आत्मा ही समझना चाहिए, जो आत्मा शब्द है उसे परमात्मा ही समझना चाहिए। तो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा समझ करके वह आत्मा अपरिणामी अविचलित होने वाली, वो कभी विचलित नहीं होती, और वह आत्मा गतिशील न होते हुए अकंपन गतिशील नहीं है परंतु सब फिर भी गतिवानों से, अर्थात गतिवान कौन है, मन की गति से भी पहले उपस्थित प्राप्त होने वाला है, उपलब्ध होने वाला है। और उस आत्मा को कोई इंद्रिय से, नैव देवा आपनम वृषत, अर्थात इंद्रिया कोई चाहे कि मैं इंद्रिय से आँख से देख लूं, नाक से सूंघ लूं, जीव से चख लूं, और किसी इंद्रिय के विषय से इंद्रिय के उस पकड़ में मैं ले आऊं, वो उसे इंद्रियातीत कहा गया है, इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है, जो इंद्रिय तक नहीं आ सकता।